अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री गौर नित्याय की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी जी की जय। श्री श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। गौर प्रेमानंदी। ऑल ग्लोरी टू द सेमुल डिवोटी। ऑल ग्लोरी टू द सेमुल डिवोटी। ऑल ग्लोरी टू द सेमुल डिवोटी। जय श्रील प्रभुपाद। आज परम मंगलमय दिन है, भगवान श्री राम का जन्म दिवस। भगवान का अवतार राक्षसों का वध करने के लिए और भक्तों को पोषने के लिए हुआ। हम वहाँ देहरादून में थे तो एक डॉक्टर ने प्रश्न किया हमसे, क्या भगवान सभी अवतार में बोलते हैं? तो मैं कहा कि हाँ बोलते हैं, कम बेसी बोलते हैं। किसी किसी अवतार में बहुत प्रवचन किए हैं, किसी अवतार में कम बोले हैं। तो प्रश्न कर दिया कि क्या कूर्म भगवान, कच्छप भगवान भी बोले हैं? तो मैं बड़ा फेर में पड़ा। मैं कहा कि नहीं, वो तो मंदराचल उठाए उठाए सो रहे थे। मंदराचल रगड़ा जा रहा था उनकी पीठ पर, तो भगवान को सुख की नींद आ गई। वो तो सो रहे थे, वो प्रवचन नहीं किए। भगवान कपिल देव प्रवचन किए हैं, भगवान ऋषभ देव, और लगभग सभी अवतार में कुछ न कुछ प्रवचन किए हैं। तो फिर वो पूछा कि भगवान राम, भगवान कृष्ण जैसा क्या प्रवचन किए हैं? भगवान कृष्ण तो बहुत प्रवचन किए हैं, अर्जुन से, उद्धव जी से, और अपने माता पिता से जन्म के समय ही प्रवचन किए। और पूछा कि भगवान राम क्या प्रवचन किए हैं? भगवान राम के प्रवचन को मैं थोड़ा सुनाऊंगा। भगवान श्री राम जब लंका में गए थे, युद्ध चालू हो गया था, युद्ध चल रहा था। एक तरफ राक्षस थे रावण के तरफ, वे रावण का जय जयकार करते थे, और दूसरे तरफ भालू बानरों की सेना थी, ये लोग भगवान श्री राम की जय बोलते थे। युद्ध चल रहा था, कई दिन युद्ध चला, लेकिन अंतिम दिन युद्ध के समय रावण अपने राजमहल से युद्ध के मैदान में आया। उसने युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया तो रावण के पास बहुत सुंदर और दृढ़ रथ था। स्वर्ग से आया हुआ रथ उसके पास था, आया हुआ नहीं, वो छीन लिया था। उसका विचित्र रस था, बहुत ही दिव्य था और युद्ध की सारी सामग्रियों से लैस था। तो रावण उस रथ पर चढ़कर आया और भगवान श्री राम रथ से नीचे युद्ध कर रहे थे। वो नीचे खड़े थे, पैदल पांव पर खड़े थे। तो इस दृश्य को देखकर विभीषण बहुत चिंता करने लगे। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भय हुआ धीरा। रावण को रथी रथ वाला और भगवान को पैदल देखकर विभीषण जी शोक में डूब गए। विभीषण जी भगवान राम के सखा हैं, वो लंका के ही निवासी थे, रावण के भाई थे, परंतु भगवान के पास आ गए थे। रावण ही भगा दिया था। विभीषण जी शिक्षा दे रहे थे कि तुम अगर अच्छी गति चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो सीता माता को लौटा दो। लेकिन रावण बहुत अभिमानी था, वो विभीषण जी को लात से मारा। वो सिंहासन के नीचे बैठे थे और शिक्षा दे रहे थे, बहुत सुंदर शिक्षा, लेकिन रावण लात से मारा और कहा कि जो तुम हमको सिखा रहे हो, ये बात जा करके उसी को सिखाओ, राम को, यहाँ तुम मत रहो। तो विभीषण जी लंका छोड़ करके भगवान राम की शरण में आ गए थे। तो भगवान राम से उनका बहुत स्नेह था, अधिक प्रीति। एक्सट्रीम स्नेह था भगवान राम के प्रति। विभीषण जी प्रेम करते थे, बहुत अधिक प्रेम करते थे। जहाँ स्नेह होता है वहाँ अनिष्ट की आशंका रहती है। राम को वे सर्वथा अयोग्य देख रहे थे। यद्यपि राम के ऐश्वर्य का पता था विभीषण को, लेकिन फिर भी स्नेह ऐसा चीज है, स्नेह के कारण वे देख रहे थे कि भगवान राम कमजोर पड़ रहे हैं। क्योंकि उनके पास रथ नहीं था, रथ पर चढ़कर रावण युद्ध कर रहा था और भगवान राम बिना रथ के थे। अधिक प्रीति मन भा संदेह, बंद चरण कह सहित स्नेहा। तो भगवान राम के चरणों में वंदना करके विभीषण कहने लगे, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, के ही विधि जितब वीर बलवाना। विभीषण जी ने कहा कि हे नाथ, आपके पास रथ नहीं है और तन त्राण शरीर को बचाने के लिए कवच भी नहीं है। भगवान राम साधु ड्रेस में थे, 14 वर्ष के लिए विरक्त का वेश बनाए थे, तो साधारण कपड़ा पहने थे, कोई छाती को बचाने के लिए कवच नहीं था और भुजा में भी कोई कवच नहीं था और पैर को बचाने के लिए भी कवच नहीं था। पैर में जूते नहीं थे, नंगे पांव थे। इस कारण से विभीषण जी व्याकुल हो गए, चिंतित हो गए। कहते हैं कि नाथन रथ है, आप रथ पर नहीं चढ़े हैं और आपके शरीर में कवच नहीं है और पैर में जूता नहीं है, या पैर को बचाने के लिए घुटना से लेकर एड़ी तक वीर लोग कवच पहनते हैं, तो पैर बचाने के लिए भी कवच नहीं है, पूरे शरीर को बचाने के लिए कवच नहीं है। कवच सोने का या लोहे का होता है, वो नहीं था। तो कहते हैं कही विधि जितब वीर बलवाना, रावण बहुत बड़ा वीर है, बहुत बलवान है, आप किस विधि से उसको जीतेंगे, क्या कैसे आप जीतेंगे, कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम रावण को जीत लेंगे। अधिक स्नेह से राम के प्रति चिंता हो रही है, यह सुन करके भगवान राम विभीषण को आश्वासन देते हुए कहते हैं, यहाँ भगवान का थोड़ा सा उपदेश है, वही मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। सखा वचन सुन कृपा निधाना, वो बोले भगवान राम कृपा के समुद्र हैं। तो विभीषण चिंता में पड़े थे तो भगवान राम इसे देख कर पिघल गए और बोले जय जय हो सो स्यंदन आना, मित्र तुम रथ की चिंता कर रहे हो कि मेरे पास रथ नहीं है, लेकिन जिससे विजय प्राप्त किया जाता है वो रथ दूसरा होता है, इस रथ से विजय प्राप्त नहीं होता है, असली रथ का वर्णन मैं कर रहा हूँ। भगवान राम विजय रथ का वर्णन किए, जही जय होई जिससे जय होता है सो स्यंदन आना, वह रथ दूसरा है। क्या दूसरा है भगवान राम बता रहे हैं, सौरज धीरज तहिरथ चाका, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। सौर और धैर्य, धीर धैर्य रखना और सुरता प्रकट करना, वीरता, यही उस रथ के चक्र हैं, पहिए हैं। रथ में दो पहिए होते हैं तो यही उसके पहिए हैं। और सत्य और सदाचार, यही उसकी ध्वजा है और पताका है। पताका बड़े झंडे को कहते हैं। सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य आचरण करना और सदाचार, सत्य आचार सदाचार, यही ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम परहित घोरे, और भगवान ने कहा कि बल विवेक और इंद्रियों पर संयम, यही उसके घोड़े हैं। बल विवेक दम परहित घोड़े और परहित, बल विवेक दम और परहित, दूसरे का हित करना, यही उसके चार घोड़े हैं। विजय रस के, और क्षमा कृपा समता रज्जु जोरे, और उन घोड़ों को बांधा गया है रस्सी में रज्जु, क्षमा कृपा समता रज्जु जोरे। क्षमा समर्थ होते हुए भी किसी को दंड न देना, और दुख सह लेना, उसको क्षमा कहते हैं। और सभी जीवों के प्रति समता और सबके प्रति कृपा, यही रस्सियाँ हैं, यही घोड़ा बांधने के लगाम हैं। अमल अचल मन त्रोण समाना, और जो निर्मल मन है और अचल मन, यही तर्कस है। तर्कस है, तर्कस कहते हैं बाण रखने के बर्तन को जिसमें बाण रखा जाता है। तो निर्मल और अचल, प्योर एंड स्टेडी, प्योर मन हो और अस्थिर मन हो, यही तर्कस है। सम जम नियमन सिली मुख नाना, और उस तर्कस में सम मन की शांति, यम नियम, यही उसमें बाण है सिली मुख। यम नियम का वर्णन भगवान ने श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंध में किया है। 12 यम होते हैं और 12 नियम, इनको ही भगवान राम बाण के रूप में कह रहे हैं। अहिंसा सत्यमस्तेय असंगो ह्रीर संचय, अहिंसा किसी जीव को दुख न देना, किसी का अधिकार न छीनना, ये अहिंसा कहलाती है। और हिंसा का अर्थ है किसी को दुख देना, किसी का वध करना, या किसी का हक छीनना, किसी का अधिकार छीनना, ये हिंसा कही जाती है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी को बोलने के लिए कहा गया था अहिंसा सब अहिंसा पर। उस समय श्रील प्रभुपाद झांसी में रहते थे और महात्मा गांधी का आंदोलन चलता था अहिंसा, तो इसी अहिंसा पर बोलने के लिए प्रभुपाद जी को कहा गया। बहुत लोग जुटे थे तो श्रील प्रभुपाद ने पहले हिंसा शब्द की व्याख्या किया। हिंसा का अर्थ होता है किसी के अधिकार को छीनना, दबाना, या उसे दुख में डालना, और बध कर देना, ये तो हिंसा शब्द का अर्थ है ही। लेकिन प्रभुपाद जी ने स्पष्ट कहा कि प्रत्येक जीव को अधिकार है कृष्ण से प्रेम बढ़ाने का, कृष्ण की भक्ति करने का, ये उसका स्वरूप है। जीवे का स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, लेकिन कोई भी काम ऐसा करें जिससे जीव की कृष्ण भक्ति में बाधा पड़े तो ये हिंसा है। तो किसी जीव को ऐसी स्थिति में नहीं डालना चाहिए जिससे उसका अधिकार, कृष्ण भक्ति करने का अधिकार दबता हो। सबको अधिकार है कृष्ण की भक्ति करने का, भगवान नाम जपने का और प्रणाम करने का। यह अधिकार देना, इस तरह का प्रचार करना जिससे जीव कृष्ण की भक्ति कर सके, यही अहिंसा है। प्रभुपाद जी ने साफ साफ कहा, लेकिन महात्मा गांधी का अहिंसा का अर्थ था कि किसी को मारना पीटना नहीं, शांति से अपनी मांगे रखना। लेकिन जीव की वास्तविक मांग क्या है, उसका वास्तविक नीड, वास्तविक अधिकार है कृष्ण भक्ति करना। तो कृष्ण की भक्ति करने की सुविधा देना, सब तरह से उसका प्रचार करना, मनोबल बढ़ाना, यही अहिंसा है और इसके विपरीत हिंसा है। तो भगवान कहते हैं भागवत में कि अहिंसा सत्यमस्त्यम्। अहिंसा और सत्य तथा चोरी न करना, ये यम नियम है, यम है। चोरी न करना, अस्त्यम्, किसी के अधिकार में स्वाभाविक कोई धन है, कोई सुविधा है, तो उसको छीन लेना, यह चोरी है। बहुत बड़े बड़े पद पर रहने वाले लोग जनता के पैसे की चोरी करते हैं, और हमने सुना है कि पैसा चुरा चुरा करके और स्विस बैंक में जमा करते हैं, ये बड़े बड़े चोर हैं। वह देश की जनता का पैसा है लेकिन चोरी करते हैं। तो चोरी न करना, जितना भगवान दिए हैं इसमें संतोष करना, ये यम है। तो भगवान राम कहते हैं कि यही बाण है, अहिंसा सत्यमस्त्यम् असंगो ह्रीर संचय। असंग किसी स्थान में, किसी वस्तु में या व्यक्ति में आसक्त नहीं होना, असंग। और ह्री, ह्री का अर्थ है लज्जा, या भी एक यम है। विकर्म में लज्जा करनी चाहिए, बुरे कर्म में लज्जा होनी चाहिए, यह एक बाण है। असंचय और अधिक संचय नहीं करना चाहिए। अधिक वस्तु भोगने की चेष्टा करना, अधिक पैसा जमा करना, इसको संचय कहते हैं। पर संचय दुख का कारण है, इसलिए भगवान कहते हैं असंचय, संचय नहीं करना, यह यम है। और नियम शौचम जपस तप मौनम। शौचम शुचि रहना, सफाई रखना, कपड़े की, मन की, देह की, स्थान की सफाई रखना, इसको शौचम कहते हैं। प्रतिदिन स्नान ठीक से करना और समय पर करना, यह नियम है। भगवान बता रहे हैं कि शौच एक नियम है। यम का अर्थ होता है नहीं करने लायक काम, और नियम का अर्थ है करने लायक काम, जिसको करना चाहिए। शौचम स्थान को और वस्त्र को और देह को शुद्ध रखना, इसके साथ ही मन को भी पवित्र रखना, मन को साफ रखना। मन साफ होता है भगवान का स्मरण करने से। ओम पवित्र पवित्र वा तो जो व्यक्ति चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, वो पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करता है तो वो पवित्र हो जाता है। बाहर भीतर से वो शुचि है, सब बाह्याभ्यंतर शुचि है। सर्वम अवस्था गतो पिबा, किसी भी अवस्था में व्यक्ति है, यदि वह कृष्ण का स्मरण कर रहा है तो बाहर भीतर से पवित्र है। तो मन पवित्र होगा भगवान का स्मरण करने से, उनके नाम का उच्चारण करने से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। भगवान राम कह रहे हैं कि ये यही यम नियम तर्कस में बाण हैं। इस भजन सारथी सुजाना, और ईश्वर का भजन करना, भक्ति करना, यही सारथी है इस रथ का। विरत चर्म संतोष कृपाना, और वैराग्य ढाल है चर्म, वैराग्य ढाल है। और संतोष तलवार है। विरति चर्म संतोष कृपाना, युद्ध में कृपाण चाहिए, तलवार चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि वैराग्य तलवार है और संतोष ढाल है। इस तरह से युद्ध किया जाता है। रावण के पास रथ था, बहुत अच्छा रथ था, लेकिन वो विजय दिलाने वाला रथ नहीं था। क्योंकि वो दुराचारी था, उसके आचरण में दोष था, वो पर स्त्री को हर कर लाया है, वो क्या विजय करेगा? भगवान राम विभीषण जी से कह रहे हैं, विजय जिससे होता है वैसा उसके पास समान नहीं है। सखा धर्म में अशरथ जाके जीतन कहुन कतहुरी पुता के। हे मित्र, धर्म में रथ जिसके पास है, हमने जो वर्णन किया, ऐसा रथ जिसके पास है, ऐसे रथ पर जो चढ़ा है, उसके लिए कहीं कोई शत्रु जितना बाकी नहीं है, उसके सारे शत्रु पस्त होते हैं। महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर, जाके अशरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मत धीर। हे मेरे मित्र सुनो, जिसके पास ऐसा धर्म रथ है, वो महा अजय संसार शत्रु को भी पस्त कर सकता है, जीत सकता है। सबसे बड़ा शत्रु क्या है? जन्म और मृत्यु रूप संसार। बारंबार जन्म लेना और मरना, जन्म और मृत्यु के बीच में बुढ़ापा और रोगों का जो बहुत बड़ा दुख है, भगवान गीता में कहते हैं असली समस्या मानव जाति की यही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, इनमें दोष और दुख का दर्शन करना, बारंबार विचार करना, इसमें दोष है और दुख है, इसको समझना, और यही मानव जाति की असली समस्या है। मानव जाति नहीं, सभी जीवों की समस्या है। वृद्ध होना और मरना और व्याधि से ग्रस्त होना और जन्म लेना, ये चार समस्याएं हैं। तो जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ है, धर्ममय रथ है, वह व्यक्ति संसार शत्रु को जीत सकता है। अजय जिसको जीतना बहुत कठिन है, जन्म मृत्यु के पार होना, भगवान का धाम प्राप्त करना बड़ा कठिन है, परंतु ऐसा रथ जिसके पास है, वह व्यक्ति सुगमता से जन्म मृत्यु को पार करके वैकुंठ धाम प्राप्त करता है। जो भगवान राम तो मूर्तिमान धर्म है, इस विषय में एक कथा आती है कि भगवान श्री राम इतने धर्मी धर्मव्रती थे, रावण से किसी व्यक्ति ने कहा कि तुम सीता को अपने बस में करना चाहते हो और सीता केवल राम को पसंद करती है, तो तुम क्यों नहीं राम का वेश धारण करते हो, राम जैसा पोशाक पहनो, राम जैसा श्रृंगार करो, क्योंकि तुम तो काम रूप हो, अपनी इच्छा से कोई रूप बना सकते हो, तो राम का रूप बनाओ। और सीता के पास जाओ, सीता तुमको स्वीकार करेगी। तो रावण ये बात सुन करके अपना मेकअप करने लगा, भगवान राम जैसा श्रृंगार करने लगा, राम जैसा वस्त्र पहनने लगा। परंतु जैसे ही वो राम जैसा श्रृंगार चालू किया, उसका विचार बदलने लगा। और सीता के प्रति मातृ भावना हुई कि यह दूसरे की पत्नी है, इसके प्रति अन्यथा बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वो शुद्ध होने लगा केवल राम की पोशाक पहनने से। तो उसने कहा, ये बहुत खतरनाक पोशाक है, मैं नहीं कर सकता, ये तो सब विचार बदल देता है, ये डेंजरस है, मैं नहीं करूँगा, मैं रावण ही रहूँगा, जो होने हो होने वाला होगा होगा। तो राम इतने सज्जन हैं, इतने धर्मव्रती हैं कि उनकी पोशाक पहनने से, उनके जैसा वेष बनाने से महादुराचारी रावण भी बदलने लगा। तो भगवान राम विभीषण से कह रहे हैं कि धर्म का बल होना चाहिए, यम नियम होना चाहिए, और जीवन में सदाचार और सत्य, यही सब अस्त्र शस्त्र हैं, और इसके द्वारा इन साधारण शत्रुओं को क्या महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर। महा अजय संसार शत्रु को भी जीत सकता है व्यक्ति, और विजय करके इस प्राकृत जगत को पार करके वैकुंठ में प्रवेश कर सकता है। तो यम नियम और सत्य सदाचार होना चाहिए। बहुत सुंदर बात भगवान ने कहा कि इस भजन सारथी सुजाना, और इस रथ का सारथी ईश्वर का भक्त होना चाहिए। भगवान की भक्ति करना यही सारथी है। अगर हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रसाद खाते हैं, तो जीव निश्चित भगवान को प्राप्त करेगा। ब्रह्मचर्य भी एक यम है। श्रील प्रभुपाद ने जिसकी शिक्षा दी है, नो इलिसिट सेक्स, इलिसिट सेक्स नहीं, अपनी पत्नी से संतुष्ट होना, और वह भी केवल ऋतु काल में संतान उत्पन्न करने के लिए स्त्री का सहवास करना, यह ब्रह्मचर्य है गृहस्थ के लिए। तो इस प्रकार भगवान ने उपदेश किया। विभीषण जी चरण पकड़ करके भगवान राम को कहते हैं कि इसी बहाने आपने हमको बहुत सुंदर उपदेश दिया, रथ का वर्णन करके भगवान ने यह उपदेश किया है। तो भगवान राम का जीवन परम पावन जीवन है, और आदर्श मनुष्य शील स्वभाव से युक्त कैसा होना चाहिए, तो राम जैसा। राम जैसा राजा, राम जैसा भाई, राम जैसा पति, राम जैसा पुत्र होना चाहिए। भगवान कृष्ण का जीवन चरित्र है, वो सबके लिए करने योग्य नहीं है, उनकी शिक्षा करने योग्य है। लेकिन भगवान राम जो किए हैं उनका चरित्र अनुकरणीय है। भगवान श्री कृष्ण तो भाइयों में झगड़ा लगा था, उसको रोके नहीं बल्कि और ललकार दिए, लड़ो। अर्जुन को लड़ने के लिए कहते हैं, वो लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान राम भाइयों में प्रेम करते हैं। बहुत सुंदर जीवन चरित्र है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है रामो द्विर्न भासते, राम दो वचन नहीं बोलते हैं, एक बात जो कह दिए तो कह दिए। जो बात मुंह से निकल गई भगवान राम के, वो पूरी होकर के ही रहती है। और भगवान कृष्ण तो ब्रज में रोज ही झूठ बोलते हैं, माखन खाया नहीं खाया, दही चुराने में, दूध चुराने में, रोज उनका झूठा ही सत्य है। वो तो भगवान है ना, भगवान कोई मनुष्य के नियम में नहीं बंधे हैं। लेकिन ऐसे प्रकट विचार किया जाए तो भगवान राम का आचरण बहुत सुंदर है, शील स्वभाव से युक्त है। आज श्री रामनवमी है, भगवान का जन्मदिन। ऐसे समय पर, ऐसे शुभ समय पर संकल्प लेना चाहिए कि भगवान राम जैसा पवित्र जीवन हमारा हो। यम नियम का पालन हो, धर्म का आचरण हो, शील सदाचार हो, सत्य सदाचार, यही भगवान ने शिक्षा दिया है। भगवान श्री राम के श्री चरण कमल में प्रणाम करके हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि आगे और भी प्रवचन करना है। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण।